ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये बताया कि बाबा को कैसे याद करना है, बाबा से मीठी मीठी रूहान करनी है। जैसे हम देखते हैं साकार में प्यारे ब्रह्मा बाबा हर रोज श्री बाबा से ऊंची बात करते थे, कमाल है बाबा की, आपने हमें चुन लिया, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। तो ऐसे बाबा ने भी कहा कि बच्चों को बाबा से प्यार से बातें करनी है। और दूसरी बात बाबा ने कही कि बच्चों को याद की यात्रा पर रहना है। याद की यात्रा पर ऐसे रहना है जैसे कि कोई फांसी पर लटका हो। हमारी जो है फांसी वो अलौकिक है, बाबा को याद करने की है, बाबा को ही याद करना है। ब्रह्मा बाबा खुद भी जब बैठते थे ध्यान रखते थे कि बुद्धि इधर उधर ना जाए, पूरा टाइम बाबा को याद करते थे। फिर बाबा ने तीसरी बात कही कि ज्ञान की पूरी धारणा करनी है। अगर ज्ञान की धारणा नहीं होती है तो बुद्धि इधर उधर भटकती है, ये क्या हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, कई बातें कई संकल्प बुद्धि में आते हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हारी गॉडली यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई करते हैं तो बुद्धि इधर उधर नहीं जानी चाहिए। जैसे लौकिक में भी स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो यहाँ देखेंगे वहाँ देखेंगे, बुद्धि इधर उधर जाएगी। तो इसलिए बाबा ने ये भी कहा तुम कितने पुराने आशिक हो, आधा कलब से बाबा को याद करते आए हो, अभी बाबा आया है, एक ही आशिक है और तुम सब आशिक हो, तुम्हें क्या करना है, बाबा को याद करना है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा की महावाक्य। आज की तारीख है 14 नवंबर 2025। मुरली का मुख्य हैडी मीठी बच्ची, ऊंच से ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। ऊंच से ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो, यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे, बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। आज का प्रश्न है जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती उनकी निशानी क्या होगी। जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती उनकी निशानी क्या होगी, उसका अर्थ है वे छोटी छोटी बातों में रंज अथवा नाराज होते रहेंगे। बात को क्या करते हैं कि क्या सोचेंगे, ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, छोटी छोटी बातों को अनुमान लगा करके खुद ही नाराज होते। बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातों में सोचना नहीं है तो आएंगे और जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वह छोटी छोटी बातों में रंज नाराज होते रहेंगे। जिनकी बुद्धि में जितने ज्ञान की धारणा होगी उतना उसे खुशी होगी। बुद्धि में अगर ये ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान होना ही है, तो कभी भी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मुझे मुझे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे समझते हैं ऊंच से ऊंच भगवान को कहा जाता है, आत्मा का बुद्धि ही घर की तरफ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा भी रहते हैं और हमारा घर भी वही है। अभी हमें घर जाना है तो बाबा कहते हैं आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको ये बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते हैं। मैं तो कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़े हुआ। ब्रह्म को वो अपना घर नहीं समझते, उसमें के ब्रह्म एक तत्व है, हम उसमें जाकर के लीन हो जाएंगे। तो बाबा कहते घर थोड़े हुआ, घर में तो ठहरना होता है, अगर लीन होना तो मिट्टी में मिल जाना होता है। तो बाबा कहते घर में तो ठहरना होता है, तो बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ते हैं ना, अब तो रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। तो बाबा कहते जैसे कोई फांसी पर चढ़ाते तो लटका रहता ना, तो बाबा कहते अभी तुम कहां चढ़े हुए हो, अब तो रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। अंदर में है हमको ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच घर ले जाते, ऊंचते ऊंच बाप आकर हमको ऊंचते ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर चलना है। कौन सी बात? एक तो रूहानी फांसी पर लटके रहे और दूसरी बात कि अब हमें घर चलना है। ऊंचते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच है, वह ऊंच और ये नीच, सत्यु में सब ऊंच और रावण राज्य में ये नीच। उनको ऊंच का पता ही नहीं है, ऊंच मानो को ही नीच का पता नहीं। जब ऊंची स्टेज पर है सत्यु में है, उनको ये पता ही नहीं कि हम भी नीचे जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऊंच वालों को नीच का पता ही नहीं है। अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंच एक भगवान को कहा जाता है, बुद्धि ऊपर में चली जाती है। बाबा कहते हैं वह है ही परम धाम में रहने वाला। ये कोई भी नहीं समझते हैं कि हम आत्मा भी वहां पर रहते हैं। जहां बाबा रहते हैं वहां हम आत्मा भी वहां पर रहने वाले हैं। यहां आते हैं सिर्फ पाठ बजाने के लिए, ये भी कोई के ख्याल में नहीं रहता है, अपने ही धंधे दौरे में लगे रहते। दुनिया की हालत देखो, अपना धंधा दौरी, अपनी चिंता, कारोबार की चिंता। तो बाबा की तुमको याद ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हमारा घर है, हम आत्मा वहां रहती थी। तो बाबा कहते हैं अपने ही धंधे दौरे में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं ऊंच से ऊंच तक बनेंगे जब बाप की याद में मस्त रहेंगे। याद से ही ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वह भूलने की बात ही नहीं। कई तो ऐसे भी हैं बाबा जो पढ़ाते हैं भूल जाते, क्यों? क्योंकि बुद्धि उधर रहती है। तो बाबा कहते हैं नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वह भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, छोटे बच्चे आते हैं उनको बता दो आत्मा का है बाबा का है, फटाफट बताएंगे। साल का बच्चा होता है फटाफट बताता है, तो वो भी तो वर्णन करते हैं ना। तो बाबा कहते छोटे बच्चे ही वर्णन करेंगे, बाकी योग के बात को बच्चे समझेंगे नहीं। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा को पूरी रीति समझते नहीं है। हम कितना ऊंचते ऊंच जाते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, पांच तत्व यहाँ है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में ये नहीं होते। सूक्ष्म वतन में ना पांच तत्व है, मूल वतन में भी ये पांच तत्व नहीं है। तो बाबा क्योंकि पांच तत्व यहाँ होते हैं, मूल वतन सूक्ष्म वतन में ये नहीं होते हैं। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास आदि पढ़ना भी ये ज्ञान है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। वो क्या है? शास्त्रों का ज्ञान है। मनुष्य समझते शास्त्र आदि पढ़ना ये भी ज्ञान है। कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है। शास्त्र पढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, उनको कितना मान मिलता है, कितनी कमाई होती है। तो बाबा कहते शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इनमें तो कोई ऊंचाई है नहीं, मान मिला ऊंच पद तो नहीं मिला ना। तो बाबा कहते तुम तो जाकर के सतियों में इतने ऊंच बनते हो, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। ऊंचे से ऊंचा है ही एक भगवान, उनके द्वारा हम ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, ये सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते हैं। कह देते हैं ये सब कल्पना है। शुरू में आते थे नए नए लोग आते थे, उनको स्वर्ग की बातें, परम धाम की बातें सुनाते थे, कहते ये तो अपनी कल्पना सुनाते हैं, ये तो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं होते थे। और अभी समझते हैं, समझने लग गए हैं, कह लेते हैं सब कल्पना। ऐसे क्या समझना है, क्या समझना है, किसी को समझाओ, अगर नहीं सुनता है, नहीं समझता है, कल्पना कह देता है या ज्ञान सुन के छोड़ के चला जाता है, तो बाबा कहते यही समझना ही हमारे कुल का ही नहीं। कई बार कहाँ पर प्रदर्शनी लगाते थे, कितना खर्चा होता था, और खर्चा करने के बाद भी कभी कोई एक निकलता, कभी कोई एक भी नहीं निकलता था, तो बाबा को चिट्ठी लिखते थे, बाबा इतना हमने किया, इतना खर्चा किया, इतनी मेहनत किया, कोई भी नहीं बाबा का बच्चा बना। बाबा कहते थे क्या तुम भूल गए हो, ये अपने कुल का है ही नहीं तो कहाँ से अपना बनेगा। तो आएगा ज्ञान सुन के गया, अंजलि लेके गया, इसलिए तुमने अपना काम किया कि ज्ञान की अंजलि दी, वो नहीं आता है तो अपने कुल का नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे क्या समझना है, ये हमारे कुल का है ही नहीं, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। बाबा को लिखते थे बाबा इतना खर्चा किया फिर हम दोबारा नहीं करेंगे। बाबा कहते दिल शिकस्त क्यों होते हो, ना जाने कहीं से कोई एक निकल आए, एक भी कई एक बार एक व्यक्ति था प्रदर्शनी की, बाबा का बच्चा बहुत लाडला, वो अकेला ही निकला, तो उसको नशा होता था कि मैं इतने खर्चे वाला हूँ, इतना खर्चा हुआ और मैं अकेला ही निकला हूँ, तो उसको भी खुशी होती थी और सब उसको बहुत प्यार भी करते थे। तो बाबा कहते हैं दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, समझा जाता है इनका पार्ट नहीं है, ये तो हमारे कुल का है ही नहीं, तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अगर तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंच, सिर ऊंच मीन्स तुम बच्चे बहुत ऊंचे हो, अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंच है, जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे, नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया वालों को नहीं जानते, उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले वो स्वर्ग में नहीं जाते हैं, फिर भी नाम तो लेते हैं ना। अब बाबा के बच्चे जो भारत के अलावा विदेश के भिन्न भिन्न देशों में है, बाबा को पहचाना वो तो जाएंगे, लेकिन फॉरेन कंट्री में जो बिल्कुल नहीं समझते लेकिन स्वर्ग का नाम तो लेते ना, हेवन कहते हैं, स्वर्ग को याद तो करते ना, परंतु स्वर्ग का नाम तो लेते हैं ना, उनको कहा जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भर स्वर्ग में जाते नहीं है फिर भी नाम तो लेते हैं ना, हेवन पैराडाइज था। मुसलमान लोग भी बहिष्ट कहते। बाबा क्या बता रहे कि सभी धर्म वाले स्वर्ग को याद करते हैं, भले नहीं जाते हैं लेकिन वो जो रस है स्वर्ग का उसका टेस्ट करने के लिए वो लोग याद तो करते हैं ना। मुसलमान लोग भी बहिष्ट कहते हैं, परंतु ये उनको पता नहीं कि वहां पर कैसे जाना है। तो बाबा कहते हैं उनको ये भी पता नहीं जाएंगे कैसे, वो राज्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद तो करते हैं ना, क्योंकि स्वर्ग सबको प्यारा लगता है। अगर तुमको कितनी समझ मिलती है, ऊंच से ऊंच बाप कितनी नॉलेज देते हैं, ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वो क्या कहेंगे, ये तो कल्पना है। उनको कौन है कि ड्रामा 5000 वर्ष का है, वो रिपीट होता है, तो बिल्कुल सीधा कह देते हैं कल्पना है, तो इनके इमेजिनेशन है। तो बाबा कहते जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वह कल्पना कह देते हैं। तो बच्चे जानते हो ये तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं कि ये पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तुम सुनते हो ये तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं हे पति पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद ये हिस्ट्री रिपीट होती है, पुरानी दुनिया सू नई बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कलप कलप आकर तुम बच्चों को ऊंच की ऊंच बनाता हूँ, पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी, अभी यही दुनिया पतित है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार जानते। बाबा बता रहे हैं क्या है तो हालत क्या है समझते हैं, लेकिन स्थिति जो है वो नंबरवार रहती है। जो समझते हैं जिनकी बुद्धि में बातें रहती हैं वे सदा खुश रहते। जो ज्ञान की बातें पुरानी दुनिया को पतित है नई दुनिया पावन है और ज्ञान का मनन करते हैं तो बाबा कहते उनकी बुद्धि सदा खुश रहती है। जिनकी बुद्धि में बातें रहती हैं वे सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कुछ न कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान पहले ही बता दिया है, ड्रामा में जो है वो चलता है, लेकिन जिनको ज्ञान की पूरी प्रकाशता नहीं है, जरा से कोई बात होगी क्यों हुआ कैसे हुआ ऐसे किया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बाबा की तो छोटी छोटी बात को लेकर के वो रंज होते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब नीच दुनिया का अंत आना ही है, कुछ भी कहो कहे नहीं हम रहेंगे इतने साल जिएंगे, इतने साल का प्लान बनाते। बाबा कहते बाबा ने कह दिया है इस नीच दुनिया का अंत आना ही है, ये है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन गए हैं, परंतु ये कुछ समझते थोड़ी है कि दुनिया की हालत क्या है। एक तरफ नीच है दूसरी तरफ साइंस के द्वारा प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो समझते थोड़ी कि दुनिया नीच है। तो बाबा कहते हैं अब ये नीच दुनिया का अंत आना है, ये है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितने नीच बन गए हैं, परंतु ये कुछ समझते थोड़ी है कि हम नीच हैं। भगत लोग हमेशा सिर झुकाते हैं, नीच के आगे सिर थोड़ा झुकाना होता है। बाबा कहते ऊंच कभी सिर नहीं झुकाते, नीच के आगे तो कोई सिर झुकाता ही नहीं है। अब बाबा के पास बच्चे आते थे, कई बाबा के सामने आकर के सिर झुकाते थे। बाबा कहते थे अभी ये भगत आ गए। अभी भी कई बाबा के बच्चे आते हैं, नए नए होते हैं, भावना वाले होते हैं, बाबा का ज्ञान भी प्यारा लगता है, आएंगे सिर झुकाएंगे और कहेंगे हमारे सिर पे हाथ रखो। लेकिन उनको ये भूल जाता है कि बाबा का वरदानी हाथ पहले से ही हमारे सिर के ऊपर है, हम बाबा की छत्र छाया में। इसलिए बाबा बच्चे को देख के समझ आते थे कि ज्ञान कितना उसने अपने जीवन में धारण किया। तो बाबा कहते हैं नीच के आगे सिर थोड़ा झुकाना होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सच्चों में कभी भी ऐसा नहीं होता, सच्चों में ना तो कोई सिर झुकाएंगे ना कोई नीचे पांव पड़ेंगे, कभी भी नहीं होता। लेकिन माँ बाप की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, तो बाबा कहते सच्चों में कभी ऐसा नहीं होता, भगत लोग ही ऐसा करते हैं। बाप तो ऐसा नहीं कहते सिर झुका करके चलो, बाबा हमेशा कहते थे बादशाह के बच्चे हो, होमनहार राजा बनने वाले हो और रॉयल फैमिली के हो तो आपकी आंतरिक स्थिति कैसी हो, एकदम मजबूत हो, ऊंच हो। तो बाबा ऐसे नहीं कहते कि सिर झुका कर चलो, नहीं ये तो पढ़ाई है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तो पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे और घर में उतर जाए। बाबा हमेशा कहते थे कई बच्चे ऐसे हैं जब क्लास में आते तो बहुत नशे में, और यहाँ से बाहर गए और गेट के बाहर गए, कारोबार याद आया और नशा उतर जाए। तो बाबा कहते ऐसी स्थिति नहीं रहे, कारोबार भी करो लेकिन साथ साथ उसी स्थिति में रहो। ऐसे नहीं कि यूनिवर्सिटी में नशा रहे और घर में उतर जाए, घर में भी नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तो कह देते हैं मैं थोड़ी ज्ञान का सागर हूँ। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे मैं कोई ज्ञान का सागर नहीं हूँ, पढ़ाने वाला शिव बाबा वही ज्ञान का सागर है। ये बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है, सागर से नदी निकलती है ना। तो ब्रह्मा बाबा क्या हुआ, ब्रह्मपुत्र द बिगेस्ट रिवर है तो वहां पर सब नदियां जाकर के मिलती है। तो बाबा कहते हैं सागर से नदी निकलती है ना, सागर तो एक है, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है, बहुत बड़े बड़े स्टीमर्स आते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कलकत्ता में है, इतनी बड़ी पता ही नहीं पड़ता है कि ये सागर है या नदी है। तो वहां तो इतने बड़े बड़े स्टीमर्स आते थे, बाबा को अनुभव है, बाबा का बिजनेस होता था, बाबा जानते थे कब स्टीमर्स आते हैं। और वो ब्रह्मपुत्र सागर के साथ मिली हुई है, सागर का भी नहीं पता पड़ता, सागर तो दिखाई देता है लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी भी सागर जैसी दिखाई देती है। बड़े बड़े स्टीमर्स आते हैं, नदियां तो बाहर भी बहुत है, पतित पावन गंगा ये सिर्फ महावीर की कहते हैं, बहुत से कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा बता रहे किसी भी देश में नदी को पतित पावनी नहीं कहते, भारत में नदी को पतित पावनी कहते, बाहर की किसी भी देश में चले जाओ गंगा को या नदी को पावनी नहीं कहेंगे, वो रिफ्रेश जरूर होंगे लेकिन भारत में भक्ति संस्कार होने के कारण नदी को पतित पावनी कह देते हैं। पतित पावनी नदी है तो फिर गुरु करने की कोई दरकार ही नहीं है। बाहर में तुम्हारे क्योंकि नदियों और तालाब में कितना भटकते हैं, कहां तो तालाब इतने गंदे होते हैं बात मत पूछो। पहले जमाने में गंगा भी त्रिवेणी पे जाते थे, इलाहाबाद बहुत प्योर पानी होता था, अभी तो जाते इतनी गंदगी है, लेकिन वो भावना है तो वहां जाएंगे डुबकी लगाएंगे गंदे होके आएंगे फिर आकर के स्नान करते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कहां तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं बात मत पूछो, उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते, स्नान करने को नहीं मिला तो मिट्टी उठा करके रगड़ते रहते। अब बुद्धि में आएगा ये सब बातें नीचे उतरने के रास्ते हैं, वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो इस ज्ञान से हमारी आंखें खुल गई। सब ध्यान से सुन रहे हो, ज्ञान से तो आंखें खुली हैं, लेकिन मुरली सुनते समय भी आंखें क्या होनी चाहिए, बोलो भाई, खुली रहनी चाहिए। माताएं हैं, क्या होना चाहिए? अगर किसको भी थोड़ी सुस्ती आ रही है तो बाबा कहते, बाबा को ऐसे हाथ करके को, बाबा हम ठीक है, करो सब बात, सब करो है, सुस्ती नहीं आएगी। सुस्ती आ जाती है ना, तो कभी कभी इतने ज्ञान के मस्त हो जाते हैं, भूल रहते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं ना, ठीक है। तो बिल्कुल अलर्ट रहना, ज्ञान से तो आंखें खुली है और मुरली सुनते समय भी आंखें खुली रहनी चाहिए। कोई किसको देखे ना आंखें बंद कर रहा, तो उसको प्यार से योग से थोड़ा सा थपथपा दो ताकि उसको और शक्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी बाबा कहते हैं, अब भक्ति आया कि ये सब नीचे उतरने के रास्ते वो लोग कितना प्रेम से जानते हैं। अब तो समझते हो कि ज्ञान से हमारी आंखें ही खुल गई हैं, तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली, तीसरी आंख भी खुल गई है ना। तो बाबा कहते अब तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकाल दर्शी कहते हैं तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसा होगा ये भी समझने की बात है। अब आत्मा को तीसरा नेत्र तो नहीं दे सकते ना, आत्मा में बुद्धि की ज्ञान, बुद्धि में ज्ञान आता है, तो बाबा कहते तीसरा नेत्र लगा नहीं सकते हैं, परंतु ये तो समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकाल दृष्टि और त्रिलोकी नाथ बनते हो। क्या बने? त्रिकाल दर्शी और त्रिलोकी नाथ बनते हो, नास्तिक से आस्तिक बन जाते। ज्ञान के तीसरे नेत्र से त्रिकाल दर्शी, त्रिलोकी नाथ, नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। ये नॉलेज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है और हिसाब किताब भी। कितनी अच्छी बात, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है और हिसाब किताब भी है। अच्छा, तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे, हम कितने जन्म लेते हैं इस हिसाब से, और धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे बाबा ने मुरली में कहा ना, तो एक बच्चों, एक दो बच्चों ने क्या किया, वो हिसाब लगाने लगे, हम कितने लेते हैं, दूसरे कितने लेते हैं, कलब की आयु इतनी है, इतने घंटे होंगे, इतने दिन रात होंगे। तो बाबा को जब बताने लगे, बाबा कहते क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट करे, पूरा टाइम क्यों वेस्ट करते, आपको तो बाबा को याद करना है, पढ़ाई पढ़नी है और याद से प्राप्ति करनी है। तो बाबा कहते हैं इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे, परंतु बाप कहती हूँ इन सब बातों में जास्ते माथा मारने की दरकार नहीं। अब बाबा तो अप्रोक्सीमेट बताते हैं कि अप्रोक्सीमेट 84 है, तो हिसाब लगाया, अच्छा मैंने 84 लिए, उसने जरूर 83 लिए होंगे। ऐसे वंडरफुल बच्चे हैं, हम शुरू से आए हैं, ये थोड़ा देरी से आए हैं, इनके इतने जन्म होंगे। बाबा कहती जो पुरुषार्थ करे वो तो पूरे जन्म लेगा, और भगत और धर्म वालों का हिसाब निकालेंगे तो इसमें कंफ्यूज होते जाएंगे। तो बाबा ने फिर उनको क्या कहा, इसमें जैसे माथा मारने की दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, यहाँ तो सब दुनिया है, सब बातों की दरकार ही नहीं। बाबा कहती सब बातों को भूलना है, सब बातों को याद नहीं करना है, तुम तो रचयिता बाप की पहचान देते हो, जिसको कोई भी जानते नहीं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, तो जो कुछ करके जाते होंगे तब तो जयंती मनाते हैं ना। गांधी अथवा कोई भी साधु आदि होकर जाते हैं तो उनके स्टैम्प्स आदि बनाते हैं, फैमिली प्लानिंग के भी स्टैम्प बनाते। उस समय भारत के अंदर बहुत कुछ ऐसी कठिनाइयां आ रही थी, तो उसमें फैमिली प्लानिंग का भी बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं कंपेन निकाल दिया था। फिर उसमें फैमिली प्लानिंग की एक स्टैम्प बना दी थी, बाबा कहते देखो किस किस की स्टैम्प बनाते। शिव जयंती के लिए भी बहुत कहा गया था, गवर्नमेंट तो समझे ही नहीं, बनाए नहीं। बाद में तो साकार बाबा की स्टैम्प बनी। अब बाबा कहते हैं फैमिली प्लानिंग की स्टैम्प बनाते हैं, अभी तुमको तो नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट हैं, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट। कौन है? ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम्हारा ये कोट ऑफ आर्म, तुम्हारा ये कोट ऑफ आर्म्स है, क्या है? हमारा बैज। बाबा के टाइम पर ये त्रिमूर्ति बैज था, तो बाबा कहते हैं ये आपका जैसे होता है ना गवर्नमेंट के अपने बना होता है मेडल होता है, तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा कोट ऑफ आर्म्स है। और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं है, तो समझती हो विशेष काले प्रीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि। बाबा कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि है मनुष्य, और विनाश काले प्रीत बुद्धि तुम्ही हो। बाप को हम बहुत याद करते हैं, बाप को याद करते करते क्या होना चाहिए? बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू आ जाते। साकार में बाबा को भी आते थे, हमने दादियों को भी देखा कि बाबा को याद करते करते इतना प्यार में खो जाते थे। बांदेली माताएं भी उस प्यार में खो जाती थी, लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। बाबा आप हमें, बाबा आप हमें आधा कलप के लिए सब दुखों से दूर कर देते। बाबा को याद करते हुए, बाबा से मीठी मीठी रूहान करते हुए हमें क्या बात करनी है? बाबा आप तो आधा कलप के लिए हमें सब दुखों से दूर कर देते हो। और कोई मित्र हुआ घोर सुगंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार नहीं है, एक ही बाप को याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा से बातें करो सुबह के टाइम पर, बाबा बहुत प्यार से सुनते भी हैं और वो टाइम कर भी सकते ना, दूसरी बातें बुद्धि में नहीं है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5000 वर्ष बाद हमें आप जगाते, ज्ञान में ज्ञान से जगाते ना, हर 5000 वर्ष के बाद आप हमें जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण के आश्री नींद में सो रहे हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अभी तो समझती हो भारत का प्राचीन योग यही है, कौन सा? बाबा को याद करना। बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखलाते हैं वह सब है एक्सरसाइज, शरीर की एक्सरसाइज और शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। वो भल करो एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा खुद भी करते थे और कराते थे, हमारी दादियां भी करती थी। बाबा कहती सब कुछ करो लेकिन ज्यादा बुद्धि उसमें ना जाए, उसके साथ साथ बाबा को भी याद करना, बैलेंस रखना है, मन की भी एक्सरसाइज करो और तन की शरीर के हिसाब से जरूरत है वह भी करो। तो बाबा कहते हैं ये तो एक्सरसाइज है शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अब तुम्हारे बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है, यहाँ आते हो समझते हो बाबा रिफ्रेश करते। आप बाबा के पास आते थे, रिफ्रेश होते थे। अभी भी देश विदेश से जो आते हैं बाबा के घर में किस लिए आते हैं? बाबा से प्यार से मिलने, रिफ्रेश होने के लिए। तो मधुबन आना आत्मा को रिफ्रेश करना और आत्मा को भरपूर करना है। तो बाबा कहते हैं वहाँ आते हो समझते हो बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ्रेश होकर बाहर जाते हैं तो वह नशा खलास हो जाता है। नंबर वाट तो है ना, बाबा समझाते हैं ये है ही पतित दुनिया। बुलाते भी हैं कि पतित पावन आओ, पर तू अपने को पतित समझती नहीं है, इसलिए पाप धोने जाते हैं। लेकिन शरीर को धोने से पाप थोड़ी निकलेगा, शरीर को थोड़े पाप लगता है, लेकिन शरीर को थोड़े पाप लगता है। बाप तो आखिर के तुम्हें पावन बनाते हैं। भारत स्वयं था मां एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भारत स्वर्ग था अभी नरक है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो, कोई विकार में गिरते हैं तो फिर होते हैं, तो जैसे कि नरक में गिर पड़ते हैं, 5 महीने से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती। अब विकार में जाना, काम विकार का उसमें जाना, तो बाबा उसको कौन सा टाइटल दे रहे हैं? 5वीं मंजिल। 5 मंजिल से कोई गिरेगा वैसे ही उसको शरीर को कहते हैं चोट लग जाती है। लेकिन बाबा कहते 5 मंजिल मीन्स इसमें गिरे तो 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं भारत कितना ऊंच था, अब कितना नीच है, अब तुम कितना समझदार बनते हो, मनुष्य तो कितना बेसमझ है। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते। बाबा के घर में आते हैं तो कितनी खुशी होती है, नशा रहता है। फिर बाबा बच्चों का चार्ट भी जानते, बाबा जानते यहाँ से गए धीरे धीरे कई बच्चों का, सबका नहीं, नशा कम होने लगता है। फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। सूर्य को बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो क्या कभी नशा कम होता है? अब इतना बड़ा इम्तिहान पास किया और उसको खुशी रहती है कि मैंने इतना बड़ा इम्तिहान पास किया, नशा कम तो नहीं होता है ना। सूर्य को बड़ा एग्जाम पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? पढ़कर पास होते हैं फिर क्या से क्या बन जाते, IAS ऑफिसर बन जाएंगे, कितना उस रोब में रहते हम क्या हैं, तो क्या से क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है। तुमको तो ऊंचते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं। सूर्य निराकार है, तुम आत्मा भी निराकार हो। तो बाबा कहते हैं यहाँ पाठ बजाने के लिए बाप आकर के पढ़ाते हैं। सूर्य निराकार है, तुम आत्मा भी निराकार हो, यहाँ पाठ बजाने आए हो। ये ड्रामा का राज बाप ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा कहा जाता है। उस नाटक में अभी कोई बीमार पड़ता, कोई नाटक है या फिल्म की शूटिंग हो रही है, कोई बीमार पड़ता है तो वो क्या करते हैं? उसे बाहर चले जाते हैं क्योंकि पार्ट नहीं बजा सकते। बाबा कहते यही नाटक ऐसा है, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। तो बाबा कह रहे हैं तो उस नाटक में कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते हैं। ये है बेहद का नाटक, यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो यहाँ हम पाठ बजाने के लिए आते हैं, हम बेहद के एक्टर्स हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा आया हुआ है ये सबकी बुद्धि में आना चाहिए। बाबा आया है हमें पढ़ा रहे हैं, बाबा ने हमें अपना बनाया है, तो ये क्या होना चाहिए? बुद्धि में रहना चाहिए, नशा रहना चाहिए, ये सबके बुद्धि में होना चाहिए। वेद का ड्रामा भी बुद्धि में रहना चाहिए। कौन कौन सी बातें, बाबा आया हुआ है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम बेहद के एक्ट्रेस हैं, बेहद का ड्रामा भी बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व के बादशाही मिलते हैं, इसलिए पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए। केवल इस खुशी में नहीं कि बाबा मिला वो तो खुशी रही, लेकिन ऊंच पद पाना है तो इसलिए पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए। तो बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में भी भल रहो परंतु पवित्र बनो। विलायत में भी ऐसे बहुत है, जब बुरे होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते। फॉरेन में होता है, कई देशों में होता है, क्या बूढ़े हो गए कोई संभालने वाला नहीं है तो कंपेनियनशिप के लिए शादी कर लेते हैं उनकी संभाल के लिए, फिर उसको सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। लाइफ में भी ऐसे होते हैं, जब बूढ़े होते हैं तो कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए मिल कर देते। कोई तो किसी न किसी को बना लेते हैं, सर्वेंट को बना लेते हैं और संभालने के लिए उसको प्रॉपर्टी भी दे देते हैं, संभालने के लिए विल करते हैं, कुछ उनको और कुछ चैरिटी को। विकार की बात नहीं रहती है, आशुक माशुक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते, उनका बाहरी जिस्मानी प्यार होता है विकार के लिए नहीं। आशुक माशुक को देखते रहेगा, माशुक आशुक को देखता रहेगा, आशुक माशुक उनका भी विकारी प्यार नहीं करते हैं। जिसका सिर्फ प्यार रहता है तो वो कौन हो, रूहानी आशिक। एक माशिक को याद करते रहो, सब आशिकों का एक ही माशिक है, सभी एक को याद करते हैं वह कितना शोभनीक है। बाबा एवर प्योर है तो बाबा कहते वो कितना शोभनीक है, आत्मा गोरी है ना, वह एवर गोरा है। तुम तो सांवरे बन गए हो, तुमको वह सांवरे से गोरा बनाता। हमारा माशुक बाबा कैसा है, आत्मा जो सांवरी हो गई है उसको गोरा बनाते हैं। ये तुम जानते हो बाप हमको गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत ऐसे हैं जो पता नहीं किसके ख्यालात में बैठे होंगे, बाबा की मुरली सुने और घर का ख्याल चलेगा, बच्चों का चलेगा, मोबाइल का चलेगा, मुरली में भी मोबाइल लेके बैठे रहते हैं और मोबाइल में पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। कम से कम मुरली के टाइम तो मोबाइल बंद कर सकते हैं ना। तो बाबा की तीन बहुत ऐसी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ख्यालात रहते हैं। स्कूल में भी ऐसा होता है, बैठे बैठे बुद्धि बायोस्कोप की तरह। स्कूल में बच्चे होते हैं ना, लास्ट में बैठेगा, लास्ट में भी ऐसा छुप के बैठेगा, लास्ट लाइन को छोड़ के दो लाइनें बीच में ऐसा बैठेगा, टीचर पढ़ा रहा है बुद्धि में वो बायोस्कोप उसको देखते रहते। फिर अचानक टीचर प्रश्न पूछता तो हैरान हो जाता। तो बाबा भी कहते यहाँ भी ऐसी है कि बुद्धि इधर उधर घूमती है, यहाँ बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बायोस्कोप तरफ, दोस्तों तरफ आदि चली जाती है। और सत्संग में भी होता है, केवल स्कूल में नहीं, सत्संगों में भी कईयों की बुद्धि चली जाती है। यहाँ भी ऐसी है, बुद्धि में नशा रहता ही नहीं है, बुद्धि में बैठना ही नहीं है, नहीं तो नशा चढ़ता। धारणा नहीं होती जो औरों को कराए। बहुत बच्चियां कहती हैं बाबा के लिए सेवा करता है, कईयों को होता है कि हम बाबा की सेवा करें, लेकिन परिवार का बंधन है, बच्चों का बंधन है, तो बाबा उनको जवाब दे रहे। माताओं का बहुत होता है, ज्ञान योग में बहुत अच्छी है, सेवा में बहुत अच्छी है, लेकिन घर के बंधन क्या, बच्चों का बंधन है, उसका बाबा जवाब दे रहे हैं। बाबा कहती हैं बहुत बच्ची आती हैं जिसकी दिल होती है कि सर्विस में कहाँ लग जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं तो बाबा कहती हैं होशियार है, कर सकती है, बच्चे छोटे छोटे हैं। बाबा के शुरू में था कई आती थी, बाबा कहते थे अच्छा परिवार में कोई संभालने वाला है, थोड़े दिन वो परिवार में उसको संभाले और तुम सेवा पर जाओ। फिर कई ऐसी होती थी जिनका कोई नहीं है, तो बाबा कहते थे कि नौकरानी रख दो थोड़े दिन के लिए जो उसको संभाले। और ऐसे कईयों ने किया भी था, घर के अंदर जो वफादार सर्वेंट हैं उसको रख देते थे, फिर सेवा करके आ जाते थे। तो बाबा कहते हैं बहुत बच्चियां आती हैं जिसकी दिल होती है सर्विस में कहाँ ना कहाँ लग जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं होशियार हैं, तो बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, माई मीन्स जो केयर टेकर करे संभाल करे सर्वेंट को कहते हैं, कोई माई को रख दो, ये तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार हैं तो क्यों रूहानी सर्विस में लग जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बहुत नशा रहना चाहिए, आगे होगा पुरुष देखेंगे। और बाबा कहते हैं अभी मातों की बारी है, अब मातों को ये सेवा करनी है, पुरुषों ने तो बहुत राज्य किया, अब सेवा किसको करनी है, माताओं को करनी है। तो बाबा कहते हैं होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए, पांच छह बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। अब इन माताओं की बारी है क्या, ज्ञान कलश रख के सेवा करना। माताएं हाथ खड़ा करो, देखो कितने प्यार से सेवा करती है ये माताएं, यहाँ सेवाधारी भी हैं और कुछ माताएं जो नीचे से आए वो हाथ खड़ा करें, ये भी नीचे से एक रात के लिए या अभी सुबह आए हैं, देखो सबके लिए ताली बजाओ। बाबा खुश होते हैं माताओं को देख करके, बाबा बहुत खुश होते थे और माताएं भी खुश होती थी बाबा के घर में आया और सब हुआ। और माताएं बहुत सेवा करती है, सेंटर पर करती है, घर संभालती है, प्रदर्शनी भी करती है, भाई भी बहुत सेवा करते हैं, लेकिन उनकी भेंट में माताओं की सेवा तो बहुत प्रकार की होती है। तो बाबा कहती हैं इन माताओं की अब बारी है सेवा की। तो बाबा कहती हैं नशा बहुत रहना चाहिए, आगे होगा पुरुष देखेंगे। हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया, माताएं जाती थी सन्यासियों से बात करती थी, पुरुषों जाते थे तो उनसे बहस करते थे, बहनों माताओं से कम बहस करते। तो बाबा कहते पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है, ये माताएं लौकिक परलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगे। कितनी बड़ी बात, ये माताएं लौकिक और परलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगे, क्योंकि बाहर जाएंगे लोगों को बताएंगे कि हमने घर में रहते हैं घर संभालते हैं सेवा करते, तुमको बड़ा अच्छा लगता है कि ये डबल काम करते हैं, उनको ये नहीं लगेगा कि घर बार छोड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये माता लौकिक परलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रोहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में बहुत टाइम वेस्ट होता है वह सुनने और सुनाने की दरकार नहीं है। दूसरा है पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप में लगा रहे, कहां भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। मेरा का बाप हमें पढ़ा रहे हैं इस नशे में रहना है, वरदान अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजने भाव, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व के सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजने, अभी श्रेष्ठ और भविष्य में विश्व द्वारा पूजने है। नंबर वन होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान, भले लास्ट नंबर है, बाबा कहते नंबर वन होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी विश्व में आगे है, महान है। आज तक भगत आत्मा लास्ट नंबर के मनके को भी आंखों पर रखते हैं, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, मेरे रतन हैं, जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाबा का बच्चा निश्चय किया है, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजने बनने की लॉटरी वरदान में मिल जाती। कितनी बड़ी बात है, बाबा को माना, बाबा का बच्चा बना, तो उसे पूजने बनने की लॉटरी व वरदान मिल जाता है। स्वरूप स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगे। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। अव्यक्तिशाली टाइटल है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बनाओ। बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, देही अभिमान की स्थिति को छोड़, देही अभिमानी बन जाओ, इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ, तो जा सकते हो। बाबा कहते हैं, बाबा डायरेक्शन दे कि देही अभिमानी बन जाओ, अपने स्वीट होम चले जाओ, तो जा सकते हो। युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता देंगे, अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग जाता है तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिविजन कौन सा आएगा, वो तो खुद समझ सकते ना। तो बाबा कहते हैं, अगर युद्ध में समय लग जाएगा तो अंतिम पेपर मार्क्स लेने में कौन सा डिविजन आएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी एक दो सूचनाएं सुन के जाएंगे, ये अति आवश्यक सूचना है अवतार भाई की तरफ से। राजस्थान में वोटर लिस्टों का पुनर्गठन किया जा रहा है, जिसके बाकी सभी बैठे रहेंगे सुन के जाए। और एक बात कहनी है कि जो भी पार्टी के भाई बहने आए वो हाथ खड़ा करें, शांति भाई से आए हुए भाई बहने हाथ खड़ा करें। आप सभी का सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है, नीचे जगह नहीं होती, इसलिए सबको ध्यान देना है कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में ही करना है। तो अभी हम सूचना बता रहे थे, राजस्थान में वोटर लिस्टों का पुनर्गठन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारी BLO घर घर जाकर वोटर लिस्टों को अपडेट कर रहे हैं। ये अपडेट करवाना अति अनिवार्य है, कारण कि भविष्य में कोई रेलवे प्लेन टिकट बुक करवाने से लेकर अन्य सरकारी कागजात के लिए वोटर ID कार्ड की जरूरत होगी, इसके बिना कोई भी कार्य संपादित नहीं होगा। अगर वोटर कार्ड नहीं है तो कोई भी कार्य, गवर्नमेंट का कार्य है, ट्रेन का है, वो नहीं हो सकेगा। देश में कहीं भी जाने पर कभी भी पुलिस व संबंधित अन्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी किसी से भी वोटर ID कार्ड मांग सकते हैं। यदि ये कार्ड नहीं होगा तो उसके लिए राज्य व देश की नागरिकता सिद्ध करनी होगी, जिसके लिए लंबी कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा, जो अत्यधिक कष्टदायक होगा। अतः भविष्य में आने वाली समस्याओं से बचने के लिए वोटर लिस्ट को क्या करना, अपडेट कराना है। तो आपके ध्यान करें, इस कार्य को करने के लिए कोई कमजोरी नहीं करें। जिन्होंने अभी तक अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाया है, मैं आज ही प्रातः 10 से 1 के बीच में अवतार भाई के ऑफिस में सुशील भाई से जरूर मिले, ये नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया जाए। और दूसरा आपको बताए, हमारे बाबा की लाडली, कहीं ने तो सुन भी लिया होगा कि हमारे बाबा की लाडली जमीनती दीदी बहुत पुरानी साकार बाबा मम्मा की पालना ली हुई और जूनागढ़ गुजरात, जूनागढ़ सब जोन की वो इंचार्ज थी। जूनागढ़ सब जोन की इंचार्ज राजयोगिनी जमीनती दीदी, जिन्होंने साकार माता पिता की पालना ली है। आपका स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक नहीं था, कल सतगुरुवार के दिन प्रातः 5:10 पर अपना पुराना शरीर छोड़ बाबा की गोद में, उनकी आयु लगभग 83 वर्ष थी। आप 63 वर्षों से समर्पित रूप में सेवाएं दे रही थी, बहुत स्थानों पर सेवा की, उनकी छोटी बहन भी सेवा कर रही थी, बहुत पूरा परिवार ज्ञान में था। आप गुजरात में अनेक सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने और उनकी अनेक बहनों को भी समर्पित कराया। तो ऐसी विशेष आत्मा के प्रति हम जब योग में बैठेंगे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनके भौतिक शरीर का कल शाम को 3:30 जूनागढ़ में भी अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और दूसरी बात है कि डबल विदेशियों का भी है और सेवाधारी भाई बहनों के लिए भी है। डबल विदेशियों के अनाउंसमेंट फिर बाद में योग के बाद करेंगे, और डबल विदेशियों की हिंदी में भी एक बार कर रही हूँ और सेवाधारियों की कर रही हूँ। जो भी डबल विदेशी 15 और 16 तारीख कल या परसों जा रहे हैं, वे अपने रिटर्न जाने की टोली सुबह 8:30 से 10 बजे तक के अंदर ले सकते हैं। और सेवाधारी जो कल और परसों जा रहे हैं तो जाने की टोली शाम को 5 से 6 के बीच में ले सकते हैं। अभी हम सभी बाबा की गोदी में याद में बैठेंगे, बाबा की याद में बाबा की गोदी में बैठ जाएंगे, बाबा को याद करेंगे। उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, सारे दिन का प्रोग्राम बताया जाएगा। नाउ विल सिट इन बाबा'स रिमेम्बरेंस, आफ्टर दैट ऑल द डबल फॉरेनर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स विल स्टे देयर, टुडेज प्रोग्राम विल बी अनाउंस्ड, ओम शांति, टुमारो इज बाबा'स डे, and we will enjoy Baba's meeting.